एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही छोटी सी किताब पर बात करने वाले हैं, लेकिन जिसका असर बहुत बड़ा रहा है।
हाँ बिल्कुल, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी कहते हैं।
सही कहा। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसने, आप कह सकती हैं, दुनिया भर में क्रांतियों को हवा दी और राजनीतिक बहसों का रुख ही मोड़ दिया।
और कमाल की बात यह है कि सोचिए 1848 में लिखी गई थी ये।
हाँ,
और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? आज भी जो हम देखते हैं, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है, ग्लोबलाइजेशन की अपनी चुनौतियां हैं, मजदूरों के अधिकार हैं, कैपिटलिज्म पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके आइडियाज गूंजते सुनाई देते हैं।
बिल्कुल। और ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल टेक्स्ट है उसमें क्या कहा गया है उसे बिना किसी पक्षपात के समझें।
सही बात है। और इसे समझने के लिए शायद हमें लेखकों को भी थोड़ा जानना होगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स।
हाँ जरूर। कार्ल मार्क्स, मतलब 1818 से 1883 तक, वो एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, कई सारी चीज़ें। उनका सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद, मतलब ये आइडिया कि किसी समाज का जो आर्थिक ढांचा होता है ना, कैसे चीज़ें बनती हैं, कौन मालिक है, वो तय करता है कि वहाँ की राजनीति और संस्कृति कैसी होगी।
अच्छा, यानी इकोनॉमी सबसे ऊपर।
हाँ, उनके हिसाब से बेस वही है। और उन्होंने ज़्यादातर जिंदगी देश निकाला में बिताई। और हाँ, दास कैपिटल जैसी भारी भरकम किताब भी लिखी।
और एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, वो कौन थे?
फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1905, वो भी दार्शनिक और समाज विज्ञानी थे। पर दिलचस्प बात यह है कि वो एक अमीर फैक्ट्री मालिक के बेटे थे।
अरे वाह, ये तो विरोधाभास लगता है।
है ना? उन्होंने खुद मैनचेस्टर, इंग्लैंड में फैक्ट्री संभाली थी, तो उन्होंने औद्योगिक क्रांति और मजदूरों की हालत को बहुत करीब से देखा था। एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उन्हें।
अच्छा,
और उन्होंने इस पे एक किताब भी लिखी थी, इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग की दशा। वो मार्क्स के न सिर्फ बौद्धिक साथी थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे और कई बार पैसों से भी उनकी मदद की।
तो ये जोड़ी काफी अनोखी थी, मतलब एक थ्योरी वाला, दूसरा प्रैक्टिकल अनुभव वाला।
हाँ, कह सकते हैं मार्क्स का जबरदस्त सैद्धांतिक ज्ञान और इतिहास की समझ, और एंगल्स का वो जमीनी अनुभव, खासकर इंडस्ट्री का। और ये सिर्फ किताबी लोग नहीं थे,
एक्टिविस्ट थे।
बिल्कुल, एक्टिव क्रांतिकारी थे। ये मैनिफेस्टो भी उन्हें कम्युनिस्ट लीग नाम के एक संगठन ने लिखने को कहा था, तो ये सिर्फ विचार नहीं, एक एक्शन प्लान भी था।
तो अगर किताब की बात करें, मैनिफेस्टो की, ये है क्या असल में? कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी की किताब है?
नहीं नहीं वैसा बिल्कुल नहीं। ये तो छोटा सा कुछ ही पन्नों का एक जोशीला राजनीतिक पैम्फलेट है। भाषा बहुत सीधी, पावरफुल।
अच्छा, तो इसका मेन पॉइंट क्या है, मतलब निचोड़ क्या है?
देखिए, इसका जो सबसे केंद्रीय तर्क है वो ये कि इंसानी समाज का पूरा इतिहास उठाकर देख लें तो वो असल में क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।
वर्ग संघर्ष मतलब?
मतलब समाज हमेशा से दो मुख्य ग्रुप्स में बटा रहा है, एक वो जिनके पास ताकत है, जो शोषण करते हैं, और दूसरे वो जिनका शोषण होता है। इनके हित हमेशा टकराते हैं।
और आज के दौर के बारे में, मतलब पूंजीवादी दौर के बारे में?
मैनिफेस्टो कहता है कि पूंजीवाद ने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया, बल्कि और साफ कर दिया है। अब दो बड़े खेमे आमने सामने हैं, एक तरफ बुर्जुआ वर्ग।
बुर्जुआ यानी?
यानी वो लोग जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, फैक्ट्री, जमीन, मशीनें, पैसा, कैपिटल। और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग।
सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग?
हाँ, वो मजदूर वर्ग जिन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत, अपना लेबर बेचना पड़ता है।
लेकिन पूंजीवाद ने तो काफी तरक्की भी की, प्रोडक्शन बढ़ाया।
हाँ हाँ, मैनिफेस्टो इस बात को मानता है। वो कहता है कि बुर्जुआ वर्ग ने इतिहास में बहुत क्रांतिकारी काम किया है। उसने पुराने सामंती सिस्टम को तोड़ा, प्रोडक्शन के तरीकों में लगातार क्रांति की, ग्लोबल मार्केट बनाया, मतलब गजब की दौलत पैदा की।
तो फिर दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है, मार्क्स और एंगल्स के मुताबिक, कि पूंजीवाद के अपने अंदर ही गहरे विरोधाभास हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और यही अंतर्विरोध उसके खात्मे का कारण बनेंगे।
वो कैसे, मतलब क्या अंतर्विरोध?
जैसे एक बड़ा संकट वो बताते हैं अति उत्पादन का, मतलब सिस्टम इतना ज्यादा सामान बना लेता है कि वो बिक ही नहीं पाता और फिर मंदी आ जाती है, बर्बादी होती है।
ये तो होता है।
और सबसे बड़ी बात, पूंजीवाद ने खुद ही उस वर्ग को पैदा किया और बड़ा किया है जो आखिरकार उसे खत्म करेगा।
आप सर्वहारा वर्ग की बात कर रही हैं।
बिल्कुल, सर्वहारा वर्ग। मैनिफेस्टो कहता है कि यही सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग का कब्र खोदने वाला बनेगा।
और फिर क्या होगा, क्रांति के बाद का लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है एक सर्वहारा क्रांति जो पूंजीवादी सिस्टम को हटा देगी। फिर निजी संपत्ति, खासकर उत्पादन के साधनों पर जो बुर्जुआ मालिकाना हक है, उसे खत्म किया जाएगा।
सारी निजी संपत्ति?
नहीं, खास तौर पर बुर्जुआ निजी संपत्ति जिससे शोषण होता है। और आखिरकार एक ऐसा समाज बनेगा जो वर्गहीन होगा, राज्यविहीन होगा, एक कम्युनिस्ट समाज जहां उत्पादन के साधन सबकी साझी मिल्कियत होंगे। जैसा मैनिफेस्टो में कहा गया है, एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त होगी। ये किताब असल में पूंजीवादी में जो मजदूर का शोषण होता है और उसका जो अलगाव होता है।
अलगाव ये क्या चीज है, एलियनेशन?
हाँ, एलियनेशन मतलब सिर्फ काम से बोरियत नहीं, इसका मतलब है कि मजदूर अपने काम से, अपने बनाए प्रोडक्ट से, अपने साथी मजदूरों से, यहाँ तक कि अपनी इंसानियत से ही कट जाता है।
अच्छा, कैसे?
सोचिए, फैक्ट्री में कोई मजदूर दिन भर एक ही नट कस रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि वो जो चीज बना रहा है उसका क्या होगा, उसकी अपनी क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं, वो बस मशीन का एक पुर्जा बन गया है, अपनी मेहनत के फल से कट गया, अपनी पूरी इंसानियत से कट गया।
ये तो गहरी बात है। चलिए अब जरा इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। शुरुआत कैसे होती है इसकी?
शुरुआत बहुत ही ड्रामेटिक है, एक मशहूर लाइन से, एक भूत यूरोप को सता रहा है, साम्यवाद का भूत।
हाँ, ये तो सुना है।
ये बताता है कि उस वक्त यूरोप की जितनी भी पुरानी ताकतें थीं, पोप, राजा, जार, सब कम्युनिज्म के खिलाफ एकजुट हो रही थीं।
अच्छा,
तो मार्क्स और एंगल्स कहते हैं इससे दो बातें साफ हैं, एक कि कम्युनिज्म को अब एक ताकत माना जाने लगा है, और दूसरा अब वक्त आ गया है कि कम्युनिस्ट लोग खुलकर अपने विचार और लक्ष्य दुनिया के सामने रखें, और ये मैनिफेस्टो वही कर रहा है।
फिर आता है पहला अध्याय, बुर्जुआ और सर्वहारा। यहाँ मेन तर्क शुरू होता है। बिल्कुल,
यहीं वो अपनी वो बात दोहराते हैं, अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो दिखाते हैं कि कैसे हर दौर में दो विरोधी वर्ग रहे हैं, रोम में पेट्रिशियन और प्लेबियन, मध्य युग में सामंत और भूदास,
और आज बुर्जुआ और सर्वहारा।
हाँ, आधुनिक बुर्जुआ समाज ने इस संघर्ष को बस आसान और सीधा बना दिया है।
तो ये बुर्जुआ वर्ग आया कहाँ से?
ये सामंतवाद जब खत्म हुआ, उसके बाद व्यापार बढ़ा, नई दुनिया की खोज हुई, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इन सब ने मिलकर इसे पैदा किया
और इसने धीरे धीरे पावर हासिल कर ली।
हाँ, पहले आर्थिक, फिर राजनीतिक। मैनिफेस्टो में तो एक जगह यहाँ तक लिखा है कि जो आधुनिक सरकार है वो पूरे बुर्जुआ वर्ग के साझा मामलों को चलाने वाली एक कमिटी मात्र है।
बाप रे, ये तो बहुत तीखी आलोचना है सरकार की।
हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, वो बुर्जुआ वर्ग की तारीफ भी करते हैं।
एक महीने में?
किस महीने में? उसे इतिहास की सबसे क्रांतिकारी ताकत मानते हैं। उसने प्रोडक्शन के तरीकों में लगातार बदलाव किए, दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट बना दिया, पुराने रिश्ते नाते तोड़ दिए, हर चीज को पैसे से तोल दिया।
लेकिन इसी में उसके खात्मे के बीज भी हैं।
हाँ, दो मुख्य बातें, एक तो वो आर्थिक संकट, खासकर ओवर प्रोडक्शन वाले, सिस्टम जरूरत से ज्यादा बना लेता है, फिर सब ठप।
और दूसरा?
दूसरा, पूंजीवाद ने ही सर्वहारा वर्ग को पैदा किया है, मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो फैक्ट्रियों में एक साथ काम करती है, जिनकी हालत एक जैसी है, और जो धीरे धीरे अपने हितों को पहचान कर संगठित होते हैं।
और यही वर्ग क्रांति करेगा?
हाँ, मैनिफेस्टो का तर्क यही है कि सर्वहारा ही असली क्रांतिकारी वर्ग है। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के।
और बाकी वर्ग जैसे छोटे दुकानदार, किसान,
वो या तो खत्म हो रहे हैं पूंजीवाद में, या फिर अपनी पुरानी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे देख रहे हैं, सर्वहारा को आगे बढ़ना है। और उसकी मुक्ति तभी होगी जब पूरा सिस्टम बदले। इसीलिए वो कहते हैं कि बुर्जुआ का पतन और सर्वहारा की जीत दोनों ही अनिवार्य है।
समझ गया। फिर आता है दूसरा चैप्टर, सर्वहारा और कम्युनिस्ट। इसमें कम्युनिस्टों का क्या रोल बताया है?
इसमें वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट कोई अलग पार्टी नहीं है जो बाकी मजदूर पार्टियों के खिलाफ हो।
अच्छा।
बल्कि वो सर्वहारा वर्ग का ही हिस्सा है, सबसे आगे वाला हिस्सा, जो सबसे ज्यादा दृढ़ है और जिन्हें थ्योरी की सबसे अच्छी समझ है। वो किसी एक देश के नहीं, पूरी दुनिया के मजदूरों के कॉमन हितों की बात करते हैं।
और उनका फौरी लक्ष्य, इमीडिएट गोल,
वही जो बाकी सर्वहारा पार्टियों का है। सर्वहारा को एक क्लास के तौर पर ऑर्गेनाइज करना, बुर्जुआ हुकूमत खत्म करना और पॉलिटिकल पावर पर कब्जा करना।
और वो सबसे कंट्रोवर्शियल बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना।
हाँ, इस पर वो काफी जोर देते हैं, लेकिन वो साफ करते हैं कि उनका मतलब हर तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना नहीं है।
तो फिर कैसी प्रॉपर्टी?
उनका निशाना है बुर्जुआ निजी संपत्ति, यानी उत्पादन के जो बड़े साधन हैं, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, जिन पर कुछ लोगों का कब्जा है और जिनसे वो दूसरों की मेहनत का शोषण करके मुनाफा कमाते हैं।
इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं वो?
लॉजिक ये है कि पूंजी या कैपिटल कोई पर्सनल चीज नहीं है, वो एक सामाजिक शक्ति है। उसे बनाने और चलाने में पूरे समाज की मेहनत लगती है। तो जब उसे सामाजिक संपत्ति बनाया जाएगा तो वो बस अपना क्लास कैरेक्टर खो देगी। वो ये भी कहते हैं कि मजदूर को जो मजदूरी मिलती है उससे वो अपने लिए कोई संपत्ति नहीं बना पाता। वो तो बस जिंदा रहने और दोबारा काम पर आने लायक बना रहता है, जबकि उसकी मेहनत से मालिक की पूंजी बढ़ती जाती है।
और परिवार, देश, इन सब पर क्या कहते हैं?
इन पर भी वो बुर्जुआ सोच की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि बुर्जुआ परिवार तो पैसे और मुनाफे पर टिका है, जबकि सर्वहारा के लिए तो पूंजीवाद ने परिवार का मतलब ही छीन लिया है।
और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म?
उस पे वो कहते हैं मजदूरों का कोई देश नहीं होता, क्योंकि पूंजीवाद खुद ही दुनिया को एक मार्केट बना रहा है, देशों की सीमाएं मिटा रहा है। सर्वहारा का राज आएगा तो ये प्रोसेस और तेज होगा।
क्या क्रांति के बाद के लिए कोई एक्शन प्लान भी है इसमें?
हाँ, चैप्टर के आखिर में एक 10-पॉइंट प्रोग्राम है जो सर्वहारा के सत्ता में आने के बाद लागू करने के लिए सुझाया गया है।
जैसे?
कुछ मुख्य बातें,
जैसे
जमीन पर प्राइवेट ओनरशिप खत्म करना, इनकम पर भारी प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना, विरासत का अधिकार खत्म करना, बैंक, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब का राष्ट्रीयकरण करना और सभी बच्चों के लिए मुफ्त पब्लिक एजुकेशन।
अच्छा।
ये सब कदम है उस फाइनल गोल की तरफ जहां कोई क्लास ना हो और हर इंसान का विकास सबके विकास से जुड़ा हो।
ठीक है। अब तीसरा अध्याय, ये दूसरे सोशलिस्ट विचारों के बारे में है।
हाँ, ये उस वक्त जो दूसरे सोशलिज्म चल रहे थे उनकी आलोचना है। मार्क्स एंगल्स उन्हें तीन तरह का बताते हैं। पहला, प्रतिक्रियावादी समाजवाद। ये वो लोग थे जो इतिहास को पीछे ले जाना चाहते थे, पुराने सामंती दौर में या छोटे कारीगरों वाले दौर में। दूसरा, रूढ़िवादी या बुर्जुआ समाजवाद। ये वो लोग थे जो पूंजीवाद की कुछ बुराइयां ठीक करके उसे बचाए रखना चाहते थे,
मतलब सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते थे।
हाँ, ताकि बुर्जुआ समाज चलता रहे। और तीसरा, आलोचनात्मक यूटोपियन समाजवाद और साम्यवाद, जैसे सेंट साइमन, फूरियर, ओवेन।
यूटोपियन?
हाँ। मार्क्स एंगल्स मानते थे कि इन लोगों ने पूंजीवाद की आलोचना तो अच्छी की, लेकिन उनके तरीके काल्पनिक थे। वो वर्ग संघर्ष और क्रांति की बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था शांति से, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बदलाव आ जाएगा, जो मार्क्स एंगल्स के हिसाब से नामुमकिन था।
और चौथा, आखिरी अध्याय,
वो काफी छोटा है। उसमें कम्युनिस्टों की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात है, कि उन्हें फौरी लक्ष्यों के लिए बाकी मजदूर और डेमोक्रेटिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अपना लॉन्ग टर्म गोल याद रखना चाहिए।
बिल्कुल।
अंतिम लक्ष्य सर्वहारा क्रांति और कम्युनिस्ट समाज हमेशा ध्यान में रखना है। और हर जगह जो भी मौजूदा सिस्टम के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं उनका साथ देना है। इसमें जर्मनी पर खास फोकस था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां बुर्जुआ क्रांति के फौरन बाद मजदूर क्रांति हो सकती है।
और यहीं पर वो मशहूर नारा आता है।
हाँ, बिल्कुल। अध्याय और पूरी किताब खत्म होती है उसी जोशीले नारे से। कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाना घृणास्पद समझते हैं। सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। उनके पास जीतने के लिए एक दुनिया है। दुनिया भर के मजदूरों, एक हो जाओ।
वाह। तो अगर हम पूरी किताब के जो मुख्य संदेश हैं, जो थीम्स हैं, उन्हें समेटें तो क्या निकल कर आता है?
व्यवस्था ही समाज का आधार है, दूसरा वर्ग संघर्ष इतिहास को चलाता है, तीसरा बुर्जुआ वर्ग की दोहरी भूमिका, वो तरक्की भी लाया लेकिन शोषक भी है और अपने पतन का कारण भी बनेगा।
चौथा
पूंजीवाद के अंदरूनी अंतर विरोध और उसका खात्मा एक तरह से तय है, ऐसा उनका मानना था। पांचवा, सर्वहारा वर्ग ही वो क्रांतिकारी ताकत है जो बदलाव लाएगी। छठा, बुर्जुआ निजी संपत्ति का खात्मा क्रांति का मुख्य लक्ष्य है। और सातवां, अंतर्राष्ट्रीयतावाद मजदूरों की लड़ाई ग्लोबल है।
अगर हम आज के भारत में देखें तो क्या ये बातें कुछ मायने रखती हैं?
हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देती हैं।
हाँ।
जैसे भारत में जो इतनी आर्थिक असमानता बढ़ रही है,
हाँ।
उसे सिर्फ ये कहकर टाल देने के बजाय कि कोई मेहनत नहीं कर रहा, हम इस फ्रेमवर्क से पूछ सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उत्पादन के साधन किसके हाथ में है, कौन सिर्फ मेहनत बेच रहा है।
और आज की गिग इकोनॉमी, डिलीवरी वाले, कैब ड्राइवर,
बिल्कुल, क्या ये एक नया रूप नहीं है उसी संघर्ष का, जहां प्लेटफॉर्म मालिक एक तरह के नए बुर्जुआ हैं और जो पार्टनर हैं वो नए सर्वहारा, ये सोचने लायक है।
हाँ ये तो है। और ग्लोबलाइजेशन,
मैनिफेस्टो ने तो तभी कह दिया था कि पूंजीवाद दुनिया को एक बाजार बनाएगा, आज हम देख रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इससे फायदा किसे हो रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, क्या हमारे छोटे कारीगर किसान इस ग्लोबल रेस में टिक पा रहे।
इस किताब में कुछ लाइनें तो बहुत ही फेमस हो गई हैं, कुछ कोट्स पर बात करें।
हाँ क्यों नहीं, सबसे बुनियादी तो वही, अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इतिहास को देखने का ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है।
और सरकार के बारे में वो तीखी बात,
हाँ, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक समिति मात्र है, ये दिखाता है कि मार्क्सवादी नजरिए से राज्य न्यूट्रल नहीं होता, वो असल में रूलिंग क्लास के हित साधता है।
और पूंजीवाद के भविष्य पर उनका दावा,
वो लाइन, इसलिए बुर्जुआ वर्ग जो सबसे बढ़कर पैदा करता है वो है उसके अपने कब्र खोदने वाले, उसका पतन और सर्वहारा की जीत समान रूप से अनिवार्य है, ये दिखाता है कि वो मानते थे कि पूंजीवाद खुद ही अपने विनाश की शर्तें पैदा करता है।
भविष्य के समाज की तस्वीर कैसी थी उनके मन में?
वो कहते हैं कि अंत में एक ऐसा समाज बनेगा जहां क्लास और स्टेट नहीं होंगे, एक ऐसा संघ होगा जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त हो, ये कम्युनिस्ट समाज का आइडियल है, इंडिविजुअल का विकास सबके विकास से जुड़ा होगा।
और आखिर में वो सबसे मशहूर नारा,
सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है, उनके पास जीतने के लिए एक दुनिया है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, ये दुनिया भर के आंदोलनों के लिए एक तरह का एंथम बन गया।
तो इन सब बातों का आज की दुनिया में क्या प्रैक्टिकल यूज है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं?
नहीं, किताबी नहीं, इन्हें हम आज भी दुनिया को समझने के टूल की तरह देख सकते हैं, ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है बल्कि समाज को एनालाइज करने का एक तरीका है।
कैसे?
जैसे जब हम इतनी ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी देखते हैं तो सिर्फ ये सोचने के बजाय कि फला आदमी ज्यादा काबिल है, हम पूछ सकते हैं कि क्या सिस्टम में ही कुछ ऐसा है जो ये गैप बना रहा है, पैसा कहाँ जमा हो रहा है,
और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में
हम अपने आसपास सवाल उठा सकते हैं, मीडिया में जो चीजें नॉर्मल या कॉमन सेंस बताई जाती हैं, हम सोच सकते हैं कि ये किसके फायदे की बात है, जब हमें अपने काम में मीनिंगलेसनेस लगती है, वो एलियनेशन वाली बात।
हाँ।
तो हम समझ सकते हैं कि शायद ये सिर्फ हमारी दिक्कत नहीं, सिस्टम की दिक्कत है, ये हमें बदलाव के लिए सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि कलेक्टिव एक्शन, आंदोलनों के महत्व को भी समझाता है।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़े टेक अवे क्या है, सबसे जरूरी बात?
मेरे लिए तो सबसे जरूरी बात है सिस्टमिक क्रिटिक की पावर, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर जो दिख रहा है उसे ना देखकर उसके पीछे जो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर काम कर रहा है उसे समझने की कोशिश करना। मैनिफेस्टो हमें इसके लिए कुछ शब्द देता है, क्लास, बुर्जुआ, सर्वहारा, शोषण, आइडियोलॉजी, एलियनेशन, जो आज भी काम आ सकते हैं।
और मेरे लिए जो सबसे सोचने वाली बात है वो ये कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी क्यों ना हो, वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, वो इतिहास में बनी है, उसके अपने नियम हैं, अपने अंतर्विरोध हैं, और उसे बदला भी जा सकता है। ये आइडिया कि समाज रुका हुआ नहीं है बल्कि बदल रहा है, उसमें संघर्ष है और उसमें हम सब की, मतलब सामूहिक एक्शन की भूमिका हो सकती है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल आइडिया है। भले ही हम मैनिफेस्टो के हर नतीजे से सहमत हों या ना हों।
बिल्कुल सही कहा, और इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।